from the conference center.
So, like Sahar ke Temple Square se sammelan kendra se Yesu Masih ka girjagar antim dino ke center ke 182nd Earth Varshik Mahasammelan hai, jiske bhashan karta girjagar ke mahasadik adhikariyon aur mahapad adhikariyon mein se chune gaye hain. Mormon Tabernacle Choir द्वारा इस सभा को संगीत प्रदान किया जाएगा. गिरजा के सदस्य और अधिकारी दुनिया के सभी भागों से आए हैं ताकि अपने गिरजाघर नेताओं से सलाह और आदेश प्राप्त कर सकें. इस बॉनवेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण को जनता सेवा के रूप में पूर्ति की गई है. इस कार्य का कोई भी पुनर्प्रतिपादन अधिलेखन इस्तेमाल बिना लिखित अनुमति के मना है.
President
Andrew B. Irene, Pratham Adhyakshta ke pehla salahkar girjaghar ke is sabha ka sanchalan karega. Brothers and sisters, bhaiyo aur behno, hum aapka swagat karte hain Yesu Masih ka girjaghar antim dino ke santo ke 182nd ardh varshik mahasammelan ke pehle baithak mein. और खास तौर पर स्वागत करते हैं उन सदस्यों और दोस्तों का जो इस सम्मेलन केंद्र और विश्वभर से भाग ले रहे हैं, जहां भी तुम होगे. प्रधान थॉमस एस मॉन्सन, जो सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे हैं, ने कहा कि मैं इस सभा का संचालन करूं. हम इस महाअधिकारियों और महासहायक अध्यक्षताओं को आभार प्रकट करते हैं जो सम्मेलन में उपस्थित है. इस सभा के संगीत थेबनेकल गायक मंडली द्वारा रहेगा मैक विलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में, जिनके साथ क्ले क्रिस्टेंसन और रिचर्ड एलियट ओगन पर रहेंगे. गायक मंडली ने इस बैठक का शुरुआत ग्लोरी टू गॉड ऑन हाई गाकर किया और अब हमारे लिए गाएंगे हाउ फर्म अ फाउंडेशन. शुरुआत प्रार्थना फिर एल्डर केविन आर डंकन, जो 70 के है, द्वारा दिया जाएगा.
Thank you.
our beloved Father which art in heaven.
हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए और जो आप हमारे लिए करते हैं, और हम आपको आभारी देते हैं आपके पुत्र के लिए जो उसने आपने भेजा हमारे लिए, कि हम आपके उसके बलिदान के लिए, और हम आपके पवित्र आत्मा के लिए आभारी हैं जो हमें सिखलाता है और हमें जो आशीष देता है कि हम पवित्र बन सके। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की जो भी हमें सिखलाएंगे उनके आप साथ रहें, और उनके लिए जो अच्छाई के कार्य करना चाहेंगे कि आप उनके साथ रहें और उन्हें शक्ति दे कि वो अच्छे काम कर सके। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम अच्छे बन सके, अपनी गलतियों को सुधार सके, और ये सब हम आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
It will now be our privilege.
अब हमारा सौभाग्य होंगे हमारे भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मॉन्सन का भाषण को सुनोगे। उनके भाषण के बाद गायक मंडली गाएगी, Lord, I will follow thee. एल्डर क्विंटन एलकॉक, जो 12 देवदूतों के परिषद है, फिर हमें भाषण देंगे। उनके बाद बहन एन एम डिब, जो जवान औरतें महाअधीक्षकता के दूसरी सलाहकार है, और एल्डर क्रेग सी क्रिस्टेंसन, जो 70 के अध्यक्षता है, भाषण देंगे। प्रधान मॉन्सन।
As far as I can see,
जहाँ मैं देखता हूँ सभी कुर्सियाँ भरी हुई है, और अगर आप जो बैठे हुए हैं, जो पीछे बैठे हुए
हैं,
मैं उनको भी ध्यान में लाता हूँ जो बहुत दूर से आए हुए हैं या बैठे हुए हैं और जो हमें सुन रहे हैं। ये आज बहुत अच्छा दिन है, हमने अच्छी संगीत सुनी, जिन्होंने अच्छे से गाए। जब भी मैं उन्हें सुनता हूँ और पियानो को सुनता हूँ, मैं अपनी माँ को याद करता हूँ जिन्होंने मुझसे बतलाया। जो सब कुछ हमें मिला है कि तुमने सब कुछ किया है, मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन तुमने पियानो नहीं सीखा, लेकिन वो मेरा माँ है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने सीखा होता। कितना अच्छा है मेरे भाई और बहनों, आपको यीशु मसीह की गिरजा घर अंतिम दिनों का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूँ। 6 महीने हो चुके हैं जब मिले थे। 3 नए मंदिरों को समर्पित किया है और 1 मंदिर को पुनः समर्पित किया गया है। मैंने कैंसस सिटी मिजोरी के सुंदर मंदिर को समर्पित करने का मौका मिला है, और उसके साथ जुड़े हुए सांस्कृतिक उत्सव में भी। मैं उस उत्सव के बारे में कल सुबह की भाषा में और भी बतलाऊंगा। जून में प्रधान उगडोफ ने लंबी इंतजार के बाद ब्राजील में मानाउस मंदिर को समर्पित किया, और सितंबर की हाल ही में प्रधान हेनरी बियारिंग ने अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में नए मरम्मत किए हुए मंदिर को पुनः समर्पित किया। एक मंदिर जो मुझे 27 सालों पहले मौका मिला था समर्पित करने को। अभी 2 हफ्ते में प्रधान बोइट के पैकर ने ब्रगम सिटी की सुंदर मंदिर को समर्पित किया, जो उसकी शहर में था जहाँ वह पैदा और बड़ा हुआ। जैसे मैंने पहले भी बताया है, मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी गिरजाघर के और कोई भी चीज़ नहीं है, और हम दुनिया भर में 139 क्रिया मंदिर को लेकर बहुत खुश हैं। साथ में 27 और भी बनेंगे। हम आभारी हैं इन पवित्र विशाल भावनों का और उन आशीर्वादों का जो हमें मिला गया है। आज सुबह दो और मंदिर को मैं घोषणा करता हूं, जो आने वाले महीने सालों में बनेंगे, टुस्कान एरिजोना और अरेक्वेपा पेरू में। इन मंदिरों के बनने की जानकारी बाद में बताई जाएगी। भाई और बहनों, अब हम दूसरी विषय में बात करेंगे जो मिशनरी सेवा है। कुछ वक्त से फर्स्ट प्रेसिडेंसी और 12 चेलों के कोरम ने जवान युवक को सिर्फ 18 वर्ष के हैं और योग के हैं को मिशनरी सेवा की करने को भेजा। ये सिर्फ कुछ देशों के लिए था और इसके वजह से कई हजारों में जवान युवक मिशनरी सेवा और शारीरिक में सेवा और प्रधान पढ़ाई में आगे बढ़ पाए। हमारा अनुभव इन 18 साल उम्र के मिशनरीज का सही था। उनका मिशन का प्रधान ने कहा कि वे आज्ञाकारी, विश्वासी और सेवा उसी तरह से करते थे जैसे बड़े उम्र के मिशनरीज के तरह जो उनके मिशन में थे। इनके विश्वास और आज्ञा होने के वजह से हमें प्रेरणा मिली है कि हम सब जवान युवकों को इस कम उम्र में सेवा करने को भेज जाए, चाहे वे किसी भी देश में हो। मैं घोषणा करता हूँ आज से ही सभी जवान युवा जो योग हो और हाई स्कूल समाप्त कर चुके हो, जहाँ भी रहते हो, को मौका दिया जाए 18 वर्ष में मिशन सेवा करने के लिए। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी को इसी उम्र में भेजा जाए, लेकिन गिरजाघर के आज्ञाओं को उनकी तैयारी को देखकर सही उम्र पर भेजे। लेकिन 18 की उम्र अब सभी को उपलब्ध है। जब हमने लड़कों की उम्र के विषय में प्रार्थना किया, उसी समय हमने लड़कियों की उम्र को भी ध्यान दिया। आज मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि सभी गिरजा की अच्छी लड़कियां को 19 की उम्र की हैं आप भेज सकेंगे, ना कि 21 पर।
May be recommended for missionary service beginning at age 19 instead of age 21.
मैं बतलाता हूँ कि मिशनरी की सेवा प्रिस्टूड की जिम्मेदारी है और सभी लड़कों को मिशन पर जाना चाहिए। कई लड़कियां भी मिशन पर जाते हैं, लेकिन वो लड़कों की तरह उसी प्रिस्टूड की जिम्मेदारी में नहीं है। मैं गिरजा के लड़कियों को बतलाता हूँ कि वो बहुमूल्य है कि वे इस मिशनरी की सेवा करते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमें और भी बुजुर्ग मिशनरीज की जरूरत है, जैसे तुम्हें परिस्थिति मिले जब तुम रिटायर हो जाओ और जब तुम्हारे स्वास्थ्य अच्छी रहे। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि पूर्ण समय के प्रचारक की तरह सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार रखो। दोनों पति और पत्नी को बहुत खुशी मिलेगी जब वे साथ हमारे पिता के बच्चों की सेवा करेंगे। अब मेरे भाई और बहनों, हमें संदेश को सावधानी के साथ सुनना चाहिए जो आने वाले दो दिनों में बतलाए जाएंगे, कि हम प्रभु की आत्मा को महसूस करें और उस ज्ञान को हासिल करें जो उसने हमारे लिए चाहा है, कि यह हमारी अनुभव हो सकती है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
President Monson.
प्रधान मॉन्सन, हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर करते हैं अपने ये स्थायी घटना जो मिशनरी सेवा के विषय का है, एक प्रेरणा है। मुझे याद है 1960 में जब जवान युवा के उम्र 20 से घटकर 19 हो गया था, मैं ब्रिटिश मिशन में एक 20 साल का नया मिशनरी था। जब सबसे पहला 19 साल का मिशनरी आया था, एल्डर जेफरी आर रोलन था, एक बढ़िया जोड़। वह कुछ ही महीने में 20 साल का होने वाला था। फिर आगे ही एक साल में कई 19 साल के मिशनरी आए। वे आज्ञाकारी और विश्वासी मिशनरी थे और कार्य बढ़े गए। मैं जानता हूं कि कार्य बढ़िया हो जाएगा जैसे ये पवित्र आज्ञाकार मिशनरी उद्धारकर्ता की आज्ञा का प्रचार करेंगे। मेरे समझ में आज के पीढ़ी ज्यादा तैयार है पहले के पीढ़ी से। तुम्हारा धर्मशास्त्र का ज्ञान योग्यता के लायक है, लेकिन तुम्हें वही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जो सभी गिरजा के संदेश के गुजरना पड़ता है। इतिहास बार में नेता ने लोगों के चेतावनी दी कि पश्चाताप सिखलाया। मोमन धर्मशास्त्र में एलमा का पुत्र आदमी करता और वचनों बताया कि कमी से इतना दुखी था कि वो मुख्य निर्णय के पद से हट गया। नेफी के लोगों के नेता और अपना पूरा ध्यान अपने भविष्यता वाले नियुक्ति में लगा गया। पूरे धर्मशास्त्र के एक नामी वश है, एल्मा कहता है, अगर हृदय पवित्रता का अनुभव तुम्हें है और अगर तुम उन्हें मुक्ति का कारण आनंद महसूस करते हो, तब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस समय भी तुम्हारी ये इच्छा है। साथियों, नेता तुम्हें बार में बतलाता है कि जब संपूर्ण रूप से देखता चाहे गिरजाघर के सदस्य, खासकर हमारे युवा, कभी इतना मजबूत नहीं है। वो सलाह चाहते हैं कि कैसे सदस्य की मदद की जाए, उद्घाटकर्ता की आज्ञा मानने के लिए, और कैसे गिरे और लम्हे समय तक पवित्र रहे हैं। यह सवाल किया, हम समय भी तुम्हारी आय इच्छा है, सदियों बाद भी महत्वपूर्ण है। इस योग में हमें जो सब हासिल किया है, इसमें शामिल है यीशु मसीह के सुसमाचार की पुनस्थापी के संपर्ण। एज़रा बेंसम के 1943 में देवदूत नियुक्त होने के कुछ बाद में 12 के परिषद प्रधान जॉर्ज अल्बन स्मिथ ने सलाह दी, तुम्हारा मिशन है कि तुम लोगों के चेतावनी दो, किसी कृपालु धाक से पश्चाताप से दुनिया के दुखों का एक ही इलाज है। जब ये घोषणा की गई, हम दूसरे विश्व युद्ध के झगड़े में शामिल थे। आजकल के पाप के सागे और भी बढ़ गए हैं। एक नामी लायक ने हाल में कहा है, सभी जानते हैं कि सहायकता घटनाएं होती है और कोई भी नहीं जानते कि वो बदले। ये आधुनिक है कि तरह से हिंसा और अधर्म संगीत, ये प्रभावशाली धाक से एक अंधकारी धर्मशास्त्री द्वारा बतलाया गया था, एक पूरे संभावितता की पाप से लड़ने की शक्ति का अंत हो गया है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि गिरजाघर के कुछ लोग विश्वास करते हैं कि वो एल्मा के सवाल को सीधा है में जवाब नहीं दे सकते, वो एक समय मुक्ति का आनंद नहीं महसूस करते। अगर ये सब बातें आपको लगे होती है, जरूरी है कि सोचना क्यों तुम मुक्ति के आनंद को नहीं महसूस करते हो। कई लोग जो सोचते हैं कि उनकी धार्मिकता और वचन बढ़ता कम है, कभी गंभीर पाप का अपराध में नहीं शामिल है, मगर उन्होंने मूर्खता में चुनाव किया है। कुछ लोग पवित्रता वादों को निभाने में लापरवाह है, आने लोग ज्यादा समय उपकर में बिताते हैं, फिर वे ऐसी बात सोच लेते हैं जैसे गवाही पर आश्चर्य पड़ता है। जिन्होंने ऐसे चुनाव किए हैं पश्चाताप कर सकते हैं और धार्मिक रूप से साफ हो सकते हैं। धर्मशास्त्र में खो जाना धार्मिक आहार के लिए आवश्यक है। परमेश्वर के शब्द से वचन बदलता मिलती है। दुख नजर की और अश्लीलता में दवा का काम करता है। जब हमारा वचन बढ़ता कम होता है किसी कारण, उसके लिए इलाज है पश्चाताप। सी एस लुइस 1898 में एक मेहनती ज्ञान मासिस धर्म के लेखक ने एक विषय को शक्तिशाली तरीके से लिखा। इसी धर्म उन्होंने प्रेरित नहीं करता। उसने कहा, जब तुम बीमार होते हो तुम डॉक्टर के बात सुनते हो। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा कि तुम्हारे बपतिस्मा से पहले तुम्हें अच्छाई का बुराई से बेसार है, मगर जब तुम गिरजाघर में शामिल हुए तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने की वादा है। जब तुम्हें ऐसा किया तुम्हारे उस बिसर स्थिति को छोड़ दिया और तुम्हें कभी नहीं हो सकता। उसके सलाह है कि हमें कभी स्वामी को छोड़ना नहीं चाहिए। एल्मा जोर दिलाता है कि यीशु मसीह के प्रश्चित की दवा दया के हाथ फैला गया है। क्या हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद को दोषित रखते हैं? हम सबको इस सवालों के बारे में सोचना चाहिए। एल्मा का अपना अनुभव अपने विश्वासी पिता के खिलाफ जाना और फिर समझ पाना कि माफी कितना जरूरी है और मुक्ति से आनंद महसूस करना है। जो कुछ वचन पढ़ना होता है करता है वो विचारने योग्य है। ये आश्चर्य वचन पढ़ता कि कमी से पहले आनंद और उसका करना होती है। हम कैसे अपने गरीबी लोगों को पेश आते हैं बहुत आवश्यक है। घर में हिंसा, दुरुपयोग, सबयोगता के कारण कमी और उद्धार ठीक नहीं है। बालिकों के शुभ नहीं देता है। परमेश्वर पुरुषों को जिम्मेदारी देकर हर एक उस अंशु को उनके पतियों बांटती है। परिवार दुनिया में सुसमाचार के एक अनौपचारिक घोषणा में बिना देख किए किस देश के माहौल में हम पहले हैं और क्या हमारे माता पिता हमारे दुरुपयोग करते हैं ना करते हैं। हमें कभी किसी को शारीरिक, मानसिक या संबंधों से दुरुपयोग नहीं करना है। सभ्यता की जरूरत समझ में कभी और आवश्यक नहीं रहा है। दया और सहयोगता की नींव हमारे घरों में जरूरी होती है। परिवार और वातावरण करता है जहां धार्मिक सफलता पर से मिलता है। जरूर हर तरफ सुंदरता होती है जब घर में प्रेम होता है। हमें इस योग की जरूरत में चेतावनी दी गई है कि शायद ये संभवतः पाप सबसे बड़ा चेतावनी है। ऐसा वैवेक पश्चाताप की बिना धार्मिक और वचन भावता कम आता है। फिल्में, टीवी और इंटरनेट अक्सर हानिकार संदेश और चित्र पेश करते हैं। प्रधान डीटीआई फुफ्तोप और मैंने हाल ही में अमेज़न के एक जंगल में गए और कुछ छोटे घरों पर भी सैटेलाइट डिश लगा दिया देखा। हमें खुशी हुई कि अच्छे संदेश की इलाके में भी उपलब्ध है। हमें ये भी देखा कि धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां काम बुरा और उनसे वाले चित्र का असर ना हो। एक कारण है कई अश्लीलता हमारे समय में एक सफेद बन गए थे। मेरे एक 15 वर्ष अरोनिक प्रिस्टूड रहने वाले के साथ एक प्रेरणा भरी बातचीत हुई हाल में। उसने मुझे समझाया, मैं मदद किया कि कैसे एक इंटरनेट के जमाने में जवान लोगों की लिए कितना आसान है गलत चित्र को देखना। उस युवा लोगों द्वारा तंबाकू पीने, नशील पदार्थ का इस्तेमाल करना और दारू पीना और जिद करना, मगर उसने देखा कि उस बारे में कोई जोर की शिकायत या चेतावनी नहीं देखा समझ में इस अश्लीलता की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जवान पुरुष का कहना सही है। जवाब क्या है? वर्षों से भौषिकता और देवदूत ने घर में धार्मिकों को जरूरत रखने को महत्वपूर्ण सिखलाया है। माता पिता, ये जरूरी है कि आप गिरजाघर स्वभाव और गतिविधियों में अपने परिवार के साथ लगातार चुस्त रूप से भाग ले। हालांकि ये अब प्राप्त नहीं है तुम्हारे बच्चों के सिखलाने के। प्रधान मॉनसन की घोषणा इस सुबह के, ये आवश्यक है कि ये सब विश्वासी ढंग से हमारे घरों में पूरे हो जाए कि दया, माफी और सच्चाई और धार्मिकता के स्थान में। माता पिता के पास हिम्मत होनी चाहिए इंटरनेट, टीवी, फिल्में और संगीत के द्वारा बनाने की। माता पिता के पास हिम्मत होना चाहिए कि ना बोलने का, सच्चाई का वचन करने का और शक्तिशाली गवाही देने का। तुम्हारे बच्चों को ये जानना जरूरी है कि तुम्हें उद्धारकर्ता में विश्वास, स्वर्ग के पिता से प्रेम और गिरजा में है। मेरा ये विश्वास है कि तुम सभी को ये बिशप, पुरोहित और सहायक मंडल से, नेताओं से जरूरत है कि परिवारों को सहारा देना और देखना कि धार्मिक चिंताओं को सिखलाना जो रहा है। घरेलू और बेंच शिक्षाओं मदद है। जिस युवा को मैंने सिखाया गया ने चिंता की साथ पूछा कि अपोस्टल जानते हैं जीवन में कब अश्लीलता की अशुद्ध विचार के सीख और बताओ जरूरी है। उसने जोर डाला, कहा कि कुछ जगहों पर युवा पर प्रश्निक छोड़ने से पहले भी ये जरूरी है। उद्धारकर्ता का प्राश्चित इसके बारे में है। कृपया अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद सलाहकार से बहुत करें और अपने बिशप के साथ चर्चा करें। Please talk with your parents or a trusted advisor and counsel with your bishop. के बात होती है, कुछ बालिक योग विश्वास करते हैं कि एक है जरूरी पूर्वापकार की कार्य की सिंधार से लगाए रखना। ऐसी सोच खुद से बहुत बुरा छूट बोलने जैसा है। कुछ युवा लोग मुझसे बतलाते हैं कि हमारे वर्तमान की समझ में लोकप्रिय नहीं है चित्रों में परिश्रम करने, जिसमें शामिल है सच्चे आदर्शों की अच्छी तरह पालन करना। कृपया ऐसे विचार पर ना विश्वास करें। बपतिस्मा पर हम वादा करते हैं यीशु मसीह पर नाम अपने ऊपर लेने का, उसके सेवा और तक वचन, अंत तक वचन। ऐसा वचन के लिए हिम्मत कोशिश चाहिए, वचन बढ़ाना है और ईमानदारी चाहिए और हमारे मुक्ति की कारण। एक ब्रिटेन के ओलंपिक्स के खिलाड़ी जिसने 1924 में पेरिस फ्रेंच के ओलंपिक्स में भाग लिया था, उसकी अनुभव। एरिक लिटिल चाइना गया, एक स्कॉटलैंड के प्रचारक का पुत्र था और एक बहुत धार्मिक पुरुष। उसके ब्रिटिश में ओलंपिक्स के देखदारों के ग्रोथ किया और ज्यादा दबाव में भी रविवार को 100 मीटर का अनुभव किया और इनकार करके रविवार को दौड़ने से इनकार करने का लिटिल का उधार प्रेरित करता था। उसने सम्मान में चित्र का और यादगार बढ़ाने इजाया के प्रेरित बांधों से संबित की। लिटिल का प्रशासनिक स्वभाव हमारे सभी छोटे बेटे के रविवार खेल ना खेलने का खुद का आत्मिक और ज्यादा जरूरी था। दुनिया के स्वभाव से दूर रहने के चुनाव में प्रभावकारी था। उसने ईसाया के दौराने के अपने खासा से वर्ष अंत किताब में लिखा, जैसे हमारे युवा प्रेसिडेंट मॉनसन की सलाह मिशनरी की सेवा में करेंगे और उद्धारकर्ता की सिखला सिद्धा में चलेंगे, परमेश्वर के मिलने की तैयारी करेंगे। ईसाया के शब्दों में विश्वास करना, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, जो भी वो बर्फ के साम सफेद हो जाए, वो चाहे वो गहरे लाल रंग के हो, वो रुई की तरह है। मेरे प्रार्थना है कि जरूरी गवाही करने आत्मा को अभी महसूस करे कि सखी हम अपने पूरे हृदय से मुक्ति करे और आनंद मसीह करे। मैं उद्धारकर्ता के प्रचारित की शक्ति की गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
I am inspired by the example.
मैं सच्चे गिरजाघर के सदस्यों के उदाहरण से प्रेरित हुई हूँ, जिसमें प्रश्नीय युवा शामिल है। तुम हिम्मत के साथ उद्धारकर्ता की मानते हो। तुम विश्वासी, आज्ञाकारी और शुद्ध हो। जो आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारे अच्छाई से मिलता है, सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं, मगर मेरे जीवन को भी और अन्य लोगों के घेरे मगर अनजान तरीकों से। कई वर्ष पहले मैं खड़ी थी एक दुकान में। मेरे आगे एक 16 वर्ष की महिला थी। वो निर्धर और खुश लग रही थी। मैंने उसका टी शर्ट देखा और कहा, तुम कोई दूसरे स्टेट की हो, है ना? वो मेरे सवाल से अचंभे में पड़ी और कहा, हाँ, मैं कोलोराडो से हूँ। आपने कैसे जाना? मैंने समझाया, आपके टी शर्ट के कारण। मैंने उसके कपड़े पर लिखावट से सही अनुमान लगाया और कहा, मैं मोर्मन हूँ, आप क्या आप भी? मैंने कहा, मुझे आपसे कहना होगा कि मैं अपने आपके निर्धारते से प्रशासन हूँ कि आप ऐसे शक्तिशाली घोषणा पहने घूम रही है। मैं आप में अंतर देख रही हूँ और इच्छा करती हूँ कि हर जवान महिला और हर गिरजाघर के घर के सदस्य तुम्हारी जैसा पूर्ण विश्वास और निर्धारता रखता। हालांकि इस भेंट के कई हफ्तों बाद मैंने सोचा कि कैसे ये कोलोराडो की जवान लड़की के पास इतना निर्धारता था यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का। मैं सोच से रोक नहीं सका कि मैं अपने टी शर्ट में कौन सा वाक्य लिखूं जिससे मैं विश्वास को गवाही बयान हो। मैं अंत में निर्णय किया कि मुझे ये वाक्य पसंद होगा। मैं एक मोर्मन हूँ, मैं जानती हूँ, मैं पसंद करती हूँ। आज मैं इस निदर अश्वादी कहावत पर अपनी टिप्पणियां निर्धारित करूंगी। कहावत के पहला भाग एक खुद कहे क्षमा न मानने का कहावत है। मैं एक मोमन हूँ। उस जवान महिला की तरह जिसे मैं दुकान पर मिली थी, वो डरती नहीं थी कि दुनिया को बांटने के लिए कि वो यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का की सदस्य है। मैं आशा करती हूँ कि हम भी डरेंगे नहीं और बोलने में हिचकिचा ही नहीं, मैं एक मोमन हूँ। हमें निर्दय रहना चाहिए, जैसे देवदूत पॉल था जब उसने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की समर्थ है। सदस्य के रूप में हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के चेले हैं। ऐसा परिवर्तन और निर्धारता सावधान और सतर्क कोशिश की परिणाम है। ये नीची नहीं है, ये जीवन भर का कार्य है। कहावत का दूसरा भाग दावा करता है, मैं जानता हूँ। आजकल दुनिया में कई गतिविधियां, वस्तु और दिलचस्पियां हैं हमारा ध्यान हर समय खींचने के लिए। इतने सारे रुकावट के साथ क्या हमारे पास वो शक्ति, कायदा और लगाव है महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने के लिए? क्या हम सुसमाचार की सच्चाइयों से अपने पढ़ाई, काम, मुफ्त के समय के कार्य या हमारे टेक्स्ट और ट्वीट्स के से अच्छी तरह वाकिफ है? क्या हम चुस्त ढंग से जवाब ढूंढते हैं जब सवालों के धर्मशास्त्र अध्ययन और भविष्य वक्ताओं के शिक्षण का आधान करने द्वारा? क्या हम आत्मा की स्वीकृति ढूंढते हैं? ज्ञान हासिल करने का महत्व एक अनंत सिद्धांत है। भविष्य वक्ता जोसेफ स्मिथ ज्ञान से प्रेम करते थे उसके सच्चाई शक्ति के कारण। उसने कहा, ज्ञान जीवन और ईश्वरता के लिए आवश्यक है। सुनो आप सब भाइयों, ये महान चाबी ज्ञान परमेश्वर की शक्ति है मुक्ति पाने के लिए। सभी सच्चाई और ज्ञान जरूरी है, मगर हमारे दैनिक जीवन की रुकावटों के कारण हमें ध्यान देना चाहिए सुसमाचार के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ताकि हम समझ पाए कैसे सुसमाचार के सिद्धांत को जीवन में अपनाए। जब हमारा सुसमाचार का ज्ञान बढ़ता है, हम निडर महसूस करने लगने अपने गवाही में और कह सकेंगे, मैं जानता हूँ। इसके बाद का कहावत है, मैं जानता हूँ। धर्मशास्त्र सिखलाता है, वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले नहीं। हम सुसमाचार को जीते हैं और उस पर चलने वाले बनते हैं। विश्वास आजमा कर, आज्ञाकारी रहकर, दूसरों की प्रेम से सेवा करके और उद्धारकर्ता के उदाहरण पर चल के हम ईमानदारी से कार्य करते हैं और वही करते जो हम जानते कि सच है, सभी समय और सभी बातों में और सभी जगहों पर, चाहे कोई हमें देख रहे हो या नहीं। हमारे मरणशील अवस्था में कोई समंपूर्ण नहीं। सुसमाचार को जीने के हमारे सबसे सावधान कोशिशों में भी हम सब गलतियां करते हैं और हम सब पाप करेंगे। कितना आरंभ आश्वासन है ये जानना कि उद्धारकर्ता के मुक्ति दिलाने वाले बलिदान के द्वारा हमें क्षमा मिल सकती है और हम साफ होंगे। जब मैं इस कहावत के बारे में सोचती हूँ, मैं जीती हूँ, मुझे कैरिगन नाम की जवान महिला याद आती है। उसने कहा, मैं एक साल से थोड़ा ज्यादा दिनों से गिरजाघर की सदस्य हूँ। जब मैं जांच कर रही थी, मैंने गिरजाघर को सच्चा माना क्योंकि मुझे एक गिरजाघर मिला जो विनम्रता और आदर्शों के को सिखलाता था। मैंने अपने आंखों से देखा कई क्या होता है उन लोगों को जो आज्ञाओं को अनदेखा करते और गलत मार्ग चुनते हैं। मैंने तय कर लिया बहुत पहले, मैं इतना धन्य महसूस करती हूँ सच्चाई हासिल करने पर और बपतिस्मा लेने पर, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी घोषणा में अंतिम कहावत है, मैं प्रसन्न करती हूँ। यीशु मसीह के सुसमाचार के ज्ञान को हासिल करना और अपने दैनिक जीवन में सुसमाचार के सिद्धांतों को अच्छी तरह जीना कई गिरजाघर सदस्यों को जोश से बदलाने में मदद करता है। मैं सुसमाचार से प्रेम करती हूँ। ये एहसास आता है जब पवित्र आत्मा हमें बयान करता है कि हम स्वर्ग पिता के बच्चे हैं। वो हमारी परवाह करता है और हम सही मार्ग पर है। सुसमाचार के प्रति हमारा प्यार बढ़ता है जब हम स्वर्ग पिता के प्यार और उद्धारकर्ता द्वारा वादा किए शांति अनुभव करते हैं। जब हम उन्हें दिखाते हैं कि हम आज्ञा मानने और उसके जैसा करने की इच्छा रखते हैं। हमारे जीवन के अलग अलग समय में, चाहे हम गिरजाघर के नए सदस्य हैं या पुराने, हम पाएंगे कि ये जोश कम हो रहा है या गायब हो गया है। कभी कभी ये होता है जब कठिन समय होता है। जब भी मुझे ये एहसास होता है, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी सुसमाचार के ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और सुसमाचार के सिद्धांतों को अपने जीवन में जीना चाहिए। असकारक पर भी कभी कभी कठिन समाचार सिद्धांत है परमेश्वर की इच्छा के प्रति विनम्रता और उसे मानना। मसीह के गेतसमनी के बगीचे के प्रार्थना में उसने पिता से कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए। अक्सर इन्हीं शांत प्रांतीय चुनाव में हम स्वर्ग के पिता के प्रेम से गहरे महसूस करते हैं और वो आनंद में प्यारे एहसास वापस आते हैं। ओरेगन की एक जवान महिला के नेताओं के सभा में मुझे बहन केमी से मिलने और बातें करने से सौभाग्य मिला। बहन विल्बर्ग ने बतलाया गई कहानी मेरे लिए एक जवान महिला के सुसमाचार को जानने, जीने और प्रसन्न करने का शक्ति और आशीर्वाद था। महन विल्बर्ग की 19 वर्षीय बेटी ब्रूक की दुर्घट रूप से हत्या हो गई थी कई वर्ष पहले, जब वो एक यूनिवर्सिटी से पहले वर्ष की चुनौतियों पर थी। बहन विल्बर्ग याद करती है, हमारे परिवार के लिए एक कठिन और दुर्घट दुख समय था। हालांकि ब्रूक ने हमें ये महान उपहार दिया था, हमने ये उसके बारे बड़े होने के समय नहीं देखा था, मगर अपने कुछ दिन की जिंदगी के हर वर्ष और चयन ब्रूक ने ऐसा उपहार दिया जो कोई बेटी अपने माता पिता को दे पाती। ब्रूक एक धार्मिक बेटी थी परमेश्वर की। इस उपहार और प्रेषित के शक्ति के कारण मुझे बल, सहानुभूति और उधारकर्ता का वादा किया शांति मिला। मैं नहीं पूछती ब्रूक आप कहाँ है और अपने प्यार भरे मिलन की अपेक्षा करती हूँ। मेरे पास स्वर्ग पिता के अनंत खुशहाली की महान योजना की गवाही है। मैं जानती हूँ कि वो हमें जानता है। मैं जानती हूँ कि प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन हमें प्रोत्साहित करता और उसके पास ले जाने का रास्ता दिखलाए के लिए देता है। मैं एक मोमन हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जीती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ। मैं ये सब विनम्रता से यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमीन।
पवित्र आत्मा स्वर्ग के पिता, 1994 में प्रधान हावर्ड डब्ल्यू अंटन ने गिरजा घर के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया कि मंदिर को स्थापित करना सदस्य होना का महान जय। बाद में उसी साल बाउंटीफुल यूता मंदिर का बनावट खत्म हुआ। हम सदस्यों में से अपने बच्चों को मंदिर जाने के लिए तैयार किया, प्रार्थना करते हुए कि उसे धार्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। जब हम मंदिर में शांति से चल रहे थे, मैंने अपने आप को महान इमारत, सुंदर बनावट, रोशनी को ऊंचे खिड़कियों और बाहर निकलते हुए कई प्रेरित चित्र को प्रशंसा पूर्वक देखा। इस पवित्र इमारत से सभी चीजों बहुत उत्तम थी। दिव्य कमरे में हालते ही तबे में मैंने जाना कि हमारे सबसे छोटा पुत्र 6 साल के बेन मेरे पैरों पर चपट कर था। वो शब्दाओं था, शायद छोड़ा परेशान था, क्या हुआ पुत्र? मैंने देर से कहा, पिताजी, उसने कहा, क्या हो रहा है? मैंने कभी ऐसा नहीं महसूस किया। जानते हुए कि हमारे पुत्र ने पहली बार पवित्र आत्मा के प्रभाव को इतनी शक्तिशाली रूप से महसूस किया था, मैंने उसके बगल में नीचे फर्श पर घुटने पर बैठ गया, जबकि और दूसरे दर्शक हमारे इर्द गिर्द चलने लगे। बेन और मैंने मिनटों तक बगल के बगल में गुजरा। मैं खुश था जानकर कि हम कितनी आसानी से उसके पवित्र एहसास को बात करते सके। जब हम चलने लगे, ये आसान जाता जाना कि जो बेन को सबसे प्रेरित किया था वो देखकर नहीं हुआ था, बल्कि महसूस करे हुआ था। मैंने उसके साथ अपने खुद के अनुभव को बता जा जो मैंने सीखा था। पवित्र आत्मा इस तरवार का तीसरा सदस्य है, और उसी तरह जैसे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह है, वह हमारे हृदय के विचारों और अच्छाइयों को जानता है। पवित्र आत्मा हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम खुश रहे। जैसे कि वो हमारे आने वाला चेताओं को जानता है, वो हमें मार्गदर्शन देगा। स्वर्ग के पिता के पास एक बार फिर वापस जाने के लिए स्वर्ग पिता के यीशु मसीह के आसमान से जिन्होंने मानव देना और हड्डियों के गर्भवती किया था पवित्र आत्मा आत्मा के व्यक्ति है जो हमारे आत्मा को एहसास और सत्तर से मिलता है जैसे पवित्र आत्मा का प्रभाव उनके पास विस्तृत जिम्मेदारी है धर्मशास्त्र में पवित्र आत्मा अक्सर में पवित्र प्रभु की आत्मा बादों की पवित्र आत्मा या आसानी से आत्मा को बोला जाता है पवित्र आत्मा स्वर्ग के पिता और यीशु मसीह के साथ कार्य करता है खास करके और अलग जिम्मेदारियों को पूरा करता है पवित्र आत्मा का प्राथमिक कार्य है कि परमेश्वर पिता के उसके पुत्र यीशु मसीह की गवाही का बयान करे और हमें सभी सच्चाइयों को सिखाए पवित्र आत्मा की सही गवाही और दूसरे मूल से निश्चितता कर देता है प्रधान जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने सिखलाया कि परमेश्वर की आत्मा के पास शक्ति है इंसान की आत्मा को सच्चाई बतलाने की और ज्यादा प्रभाव और समझ को वार्तालाप के साथ न कि सच्चाई स्वर के लोगों को व्यक्तिगत रूप में वार्तालाप पवित्र आत्मा राज्य की तरह है भी जाना जाता है मुश्किल या निराश के समय या उस समय भी जब जाना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे करीब है पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को ऊपर उठाएगा और सिखलाएगा कि राज्य का शांति के बारे में हमें मदद करते हैं कई साल पहले जब हमारे विस्तृत प्रवक्ता परिवार एक उत्सव का रात को भोजन पर इतना हुआ मेरे पिताजी अपने कई नातियों पोतों के खेलना शुरू किया अचानक बिना चेतावनी से वो फिर गिर पड़ा और मर गया फिर भी हमने अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द कर लिया था जब हमने प्रथम किया और मोहम्मद दास धर्मशास्त्र भविष्यवक्ताओं के जीवन का मातव के बारे में पढ़ा पवित्र आत्मा ने हमको सबको व्यक्तिगत रूप से दिलासा दिया वो तरीकों से जो मुश्किल से शब्दों में बतलाता वह जवाब जो हम ढूंढ रहे थे हमें सिद्ध दिल में मिले पवित्र आत्मा के गवाही पक्का पवित्र आत्मा शिक्षा और प्रकट करने वाला है जब हम सीखते सोचते और सुसमाचार के लिए प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे मन में रोशनी देता है और हमारे समझ को बढ़ा देता है जब हम सच्चाई को अपने परिवार गिरजाघर के सदस्यों और दोस्तों और हमारे संगतों के पड़ोसियों के पवित्र आत्मा के उनके शिक्षक के भी बताए बाटे ही वह सुसमाचार से सदस्यों को लाता है मानव हृदय तक वो बात पहुंचा देता है पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करते हैं कि हम दूसरों तक सेवा पहुंचाए मेरे लिए सबसे यादगार उदाहरण पवित्र आत्मा प्रदान थॉमस एस मानसून के जीवन और देख रेख से मिलता है जिसने कहा हमारे जिम्मेदारियों को करने से निवेदन सिखा है कि जब मैं हम शांत से प्रेरित होते हैं और तुरंत ही से करते हैं हमारे स्वर्ग पिता हमारे मार्गदर्शन देगा और हमारे और दूरदर्शन के जीवन में आशीर्वाद देगा मैं सिर्फ एक सुंदर अनुभव को बतलाता हूँ जब प्रधान मानसन बिशप के तरह सेवा कर रहा था उसने जहाँ जाना कि उसके वार्ड के एक सदस्य मैरी वाटसन अस्पताल में थे जब वह उसे देखने गए उसने देखा कि वह एक बड़े कमरे में रहा थी और दूसरे के मरीजों के साथ जब वो बहने वाटसन के पास जा रहा था उसने देखा कि एक मरीज जो उसके खाट के बगल में था ने अपने सिर को ढक लिया था प्रधान मानसन वाटसन को देख चुका और उनके पुरोहित आशीर्वाद को दिया उसने उस आनंद मिलाया बाय बाय किया था और कर जाने लगा एक साधारण आश्चर्य हुआ मैं उसे छोड़ नहीं सकता था यह ऐसा था कि कोई अंधे की हाथ के ने मेरे कंधे पर और मैंने अपने आत्मा में यह महसूस किया दूसरे खाट को की ओर जाओ जहां वो छोटी सी महिला ने अपने चेहरे को ढक लिया था मैंने दूसरे मरीज के खाट की ओर गया धीरे से उसके कंधे को छुआ और सावधानी से चादर को निश्चय किया जिसने उसका चादर देखा था आश्चर्य में हो गया वो भी मेरे वोट के थे उसका नाम कैथलीन मैकी था जब हमने उसके दूसरे को देखा उसने अपने आंखों से बातें किया बिशप तब जब तुम दरवाजे से अंदर आया मैंने सोचा कि आपने मुझे देखने आया हो जब आप दूसरे खाट के तरह गया तो मैंने सोचा कि आप मुझे देखने नहीं आया मैंने बहन मैकी से कहा यह जरूरी है कि मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ हो यह जरूरी है कि प्रभु स्वर्ग पिता जानते हैं कि तुम पुरोहित के आशीर्वाद के लिए धीरे से प्रार्थना किया था वही हमारे मुझे यहाँ लाया है हम सब के साथ पवित्र आत्मा के अनुभव हुआ है अच्छे चाहे हमें उसे हमेशा महसूस नहीं किया गया है प्रधान बोर्ड के पैकर ने सिखलाया पवित्र आत्मा उस आवाज में बातें करता है जो तुम ज्यादा महसूस करते हो ना कि सुनते जब हम आत्मा के सुनने पर बातें कर रहे हैं सबसे ज्यादा एक धार्मिक प्रेरणा को कहते हुए बतलाता है कि मुझे महसूस है ये पवित्र महसूस पवित्र आत्मा से मिलता है जो हमें जानता है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम करें इसलिए धर्मशास्त्र में बतलाया गया है प्रार्थना को किया का आत्मा है अपने 6 साल के बच्चे बहन को सिखलाते हुए मैंने ये जरूरी समझा कि मैं उसके साथ ये बतलाऊं कि वह क्या महसूस कर रहा था बपतिस्म से पहले सभी सच्चे और सच्चाई से ढूंढने वाले पवित्र आत्मा को समय समय पर महसूस कर सकते हैं पवित्र आत्मा के प्रभाव को हमेशा अपने साथ महसूस करने के लिए और उनके साथ के सारे आशीर्वादों से लायक बपतिस्मा के सदस्यों को प्राप्त होता है पवित्र आत्मा को उपहार से हम और ज्यादा क्षमता और धार्मिक उपहार बढ़ती हुई प्रकट होने की प्रिया और बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन और दिशा और शुद्ध के आशीर्वाद के वादा और दिव्य राज्य में आनंद जीवन का प्राप्त कर सकते हैं जब मैं अपने बाउंडफुल मंदिर में बहन के साथ अपने अनुभव को सोचा हुआ मुझे कई सुंदर महसूस और एहसास मिले थे एक साफ याद है कि जब मुझे जबरन उसे मातब देखना पड़ा जो मैं डट सकता था मेरे बगल में एक छोटा सा बच्चा अपने हृदय में शक्तिशाली महसूस की एहसास कर रहा था एक एहसास याद के साथ मुझे आमंत्रित किया गया ना कि सिर्फ रुकने और घुटने पर पवित्र आत्मा के जीवित सच्चाई और दिव्य मिशन की गवाही को देता हूँ और तुम परमेश्वर की सच्चाई द्वारा सब बातों को सुन जाओगे मैं गवाही देता हूँ कि पवित्र आत्मा स्वर्ग के पिता का अमोल और पवित्र उपहार हम सब के लिए है जो उसके पुत्र के पास आया गया है उसके नाम में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा को उसके गिरजाघर में प्राप्त करो मैं इन सच्चाइयों का व्यक्तिगत रूप से गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आमीन गायक मंडली और सभा अब हमें We thank thee, O God, for a prophet गाने में साथ दे गई गीत समाप्ति पर एल्डर शेन एम बावन 70 के हमें भाषण देंगे उनके बाद एल्डर रसल एम नेल्सन 12 देवदूतों के परिषद के भाषण देंगे गायक मंडली फिर गाएगी आई विल फॉलो गॉड्स प्लान
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
while serving as a young missionary in Chile.
चिले में जवान प्रचार की सेवा करते समय मैं और मेरा साथी एक साथ 10 सदस्य वाले परिवार की संख्या में मिले. मैं माँ और पांच बच्चे हर हफ्ते आते थे. हमने सोचा वो लंबे समय से सदस्य की गिरजा घर के कई हफ्तों बाद हमने जाना कि उन्हें अभी भी बपतिस्मा ने लिया. हमने तुरंत उन्हें सिखाने के लिए उनके घर गए. भान रमेश ने बहुत जल्द पाठ को सीखा. वो हमारे सिखलाए जाने वाले सभी धर्मशास्त्र को सीखने के लिए उत्सुक थी. एक शाम को हम छोटे बच्चों की बपतिस्मा की चर्चा कर रहे थे. हमने सिखलाया छोटे बच्चे बेगुनाह होते हैं और उन्हें बपतिस्मा की जरूरत नहीं है. हमने उनसे मरनाय के पुस्तक से पढ़ा. सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये तुम शिक्षा देना पश्चाताप होने करने चाहिए और बपतिस्मा उन्हें देना चाहिए जो कि पाप करते हैं. अब बच्चे पाप नहीं करते और उसे नहीं बपतिस्मा की ज़रूरत है और उनके बच्चों को ना पश्चाताप करने की आवश्यकता है और ना बपतिस्मा लेने की. सुनो, पश्चाताप में बपतिस्मा लेना पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए आगे का पालन करने के लिए है. परंतु छोटे बच्चे तो पृथ्वी की नीचे के समय से मसीह ने में जीवित है. इस धर्म शास्त्र को पढ़कर बहन रमेश रोने लगा. मैं और मेरे साथी घबरा गए. मैंने पूछा, बहन रमेश, क्या हमने कुछ गलत कही? उसने कहा, नहीं एल्डर, तुमने गलत नहीं किया. 6 साल पहले मुझे एक बेटा हुआ था. वो बपतिस्मा लेने से पहले मर गया. हमारे पादरी ने हमें बताया कि क्योंकि उसने बपतिस्मा नहीं लिया वो पीछे रह जाएंगे. ये सालों तक मैंने ये पीड़ा और दोष महसूस किया है. इस धर्मशास्त्र को पढ़ने के बाद मैं पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा जानती हूँ ये सच्चा है. मैं एक बहुत भारी बोझ अपने ऊपर से महसूस किया और ये खुशी के आंसू है. मुझे भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के सिख याद आए जिसने ये दिलासा देने वाले सिद्धांत सिखाए. प्रभु कई लोगों के को ले जाता है बचपन में भी वो लोगों के जलन और वर्तमान दुनिया के दुख और पाप से बच सके और वो इस धरती पर आने के लिए बहुत ही पवित्रता बहुत ही अच्छी. इसलिए अगर सही ढंग से सोचा जाए शोक मनाने के बाद हमें खुश होना चाहिए. 6 सालों में के ना सहने लायक दुख और पीड़ा के शख्स के सच्चे सिद्धांत ने जो प्रेमेश्वर के पिता ने जीवित भविष्यवक्ता द्वारा प्रकट किया इस दुखित महिला को मीठी शांति दी. कहने की जरूरत नहीं मगर बहन रमेश और उसके बच्चे जो हाल साल पर बपतिस्मा लिया. मुझे याद है आने परिवार के पास लिख पर बतलाने की महसूस किया. मैंने कभी कल्पना नहीं किया था ये सच्चा सिद्धांत मुझ पर भविष्यता परमेश्वर की आशीष और चंगाई का काम करेगी. मैं उसे बता करना चाहता हूँ जिन्होंने एक बच्चा खोया है और कहा क्यों मैं. ये शायद स्वर्ग के पिता अपने विश्वास को ठेस पहुंचाएगी. ये मेरा प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा मैं आशा शांति और समझदारी की कुछ किरण लाऊं. ये मेरी इच्छा है कि हमारे स्वर्ग पिता के पिता मेरे तुम्हारे विश्वास को बतलाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा. 1990 के फरवरी 4 में हमारे तीसरे लड़का और छोटा बच्चा पैदा हुआ था. हमने उसे टायसन नाम दिया. वो एक सुंदर छोटा बच्चा था और पवित्र परिवार ने उसका स्वागत किया और दिल से और खुले हाथों से. उसके भाई और बहन बहुत गौरव महसूस करते थे. हम सब ने सोचा था वो सबसे उचित लड़का होगा. जब टायसन आशा का था उसने चोक खा लिया. चोक टायसन के गले में रुक गया और उसने सांस लेना बंद कर दिया. उसका बड़ा भाई ने टायसन को ऊपर लाया बोलते हुए बच्चा सांस नहीं ले रहा है. हमने CPR देना शुरू किया. 911 को डायल किया सहायता के लिए. पैरामेडिक्स आए और टायसन को तुरंत अस्पताल ले गए. इंतजार करने वाले कमरे में हम परमेश्वर से समझदार की प्रार्थना करने लगे. बहुत देर बाद डॉक्टर आए कमरे में कहा मुझे माफ़ करना हम और कुछ नहीं कर सकते। तुम जो सही महसूस करते हो के लिए समय बिता कर सकते हो। वो फिर चली गई। जब हम टाइसर जहाँ पड़ा हुआ कमरे में पहुँचा, हमने उसके बेजान शरीर को देखा। ऐसा लगता था कि उसके छोटे शरीर के पास एक चमक है। वो कितना रोशन और पवित्र था। उस समय हमारा दुनिया बंद हो गया था। हम कैसे दूसरे बच्चों के पास जाएंगे और कैसे बताएंगे कि टाइसन घर वापस नहीं आ रहे हैं। मैं अपनी और देश बोलूँगा बाकी के अनुभव को। मेरी फरिश्ते जैसे पत्नी और मैं ने ये परीक्षा एक साथ झेले। मैं एक माँ की एहसास नहीं बता पाऊँगा। मेरे एहसास को बतलाना कठिन है। जीवन के समय में ज़्यादातर मैं सोचता हूँ, एक बात सपने देख रहा हूँ कि मैं जल्द जागूंगा और ये सपना चला जाएगा। कई रात तक मैं नहीं सोया। अक्सर मैं रात को एक कमरे से दूसरे कमरे जाता ये देखते लिए कि बाकी बच्चे कैसे सुरक्षित है। दोष के एहसास मेरे दिल में थे। मुझे दोष एहसास होता था। मैं उसका पिता था। मुझे और कुछ भी करना चाहिए था। कभी कभी आज भी 22 वर्ष बाद वो महसूस मेरे दिल में आता है और मैं उससे जल्द ही से दूर कर देता। वो हानिकारक हो सकते हैं। टायसन के मृत्यु के लगभग एक महीने बाद मेरा एल्डर डीन एलासन के साथ बातचीत हुई। उसने मुझसे बतलाया, मैं नहीं सोचता कि प्रभु तो चाहता है कि तुम खुद को दंड अपने छोटे लड़के के मौत के लिए दो। मैंने अपने स्वर्ग के पिता को प्रेम को महसूस किया उनके छूने हुए सेवक के द्वारा। मगर दोष वाले सोच मेरे मन में आते रहे और मैं जल्द क्रोध महसूस करता था। ये उचित नहीं। क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर सकता है? क्यों मैंने ऐसा फल अपने मुझे क्यों मिला? मैं उनसे क्रोधित हो जाता था और जो मुझे मदद करने आता था, मैं पाया कि खुद पर करना विनाशकारी होता है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है ऐसा विचारों को कारण अपने प्रिय दोस्तों के लिए। जब मैंने दोष क्रोध और खुद पे ध्यान करना को दबा देखा, मैंने प्रार्थना किया कि मेरा दिल बदल जाए। कुछ बहुत निजी पवित्र अनुभव से द्वारा प्रभु ने एक नया दिल दिया और भले ही एक अकेले पीढ़ी था, मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ जीना नहीं गया और पर है, पर अगर मैं विश्वासी रहूं मेरे लिए आशीर्वाद मिलेगा। मेरा जीवन बदलने लगा और मैं आशा करता के साथ आगे बढ़ने लगा। आत्मिक दुनिया से मैं भविष्यवक्ता मैं गवाही देता हूँ कि जीवन यही नहीं रुकता। आत्मिक दुनिया आगे है। टायसन हमारे परिवार का एक बहुत कीमती हिस्सा रहा है। बीते सालों में मुझे अच्छा लगता प्यारे स्वर्ग पिता की कृपा के लिए। मैं गवाही देता हूँ कि वेल पतला हो गई है। वफादारी प्रेम और परिवार एकता किसी प्रियजन के गुजरने से खत्म नहीं होता, बल्कि वो एहसास और मजबूती देती है। कभी कभी लोग पूछेंगे कितना दिन लगता है घटना से समझौता करने में। सच्चाई तो यह है, तुम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे अगर जो चले जाते हैं। हमने संपूर्ण आनंद कभी नहीं मिल गया जब तक हम पहले पर पूर्ण जीवन का सुबह में नहीं मिलेंगे। प्रभु ने जोसेफ से बतलाया कि इंसान आत्मा है और मूल वस्तु आनंद है, और आत्मा और मूल वस्तु अच्छी तरह से जुड़े हुए संपूर्ण आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और जब अलग हो जाएंगे मनुष्य संपूर्ण नहीं हो सकता। मगर फिलहाल जैसे उधार करने ने सिखाया, हम प्रसन्न रह सकते हैं। मैंने सिखा है कि जब तुम स्वर्ग पिता के पास जाओगे तब कड़वा ना सहेंगे। यीशु मसीह हमें एकता देगा। हमारे जीवन में ये महान आशीर्वाद है। क्या ये बुरा नहीं होगा अगर हम दुखी ना होए एक बच्चे के गुजरने जाने में? याद रखो, जब तुम किसी प्रियजन के को शोक सभा में जाओगे तुम्हारे हृदय के साथ, क्या जब तुम कब्र के पास जाने लगेगे और मुदर कर खली शव की शायद तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि उनके कारण हान जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जो वो अकेलापन और निराशा एक एहसास के एक संपूर्ण आनंद में खो जाएंगे। मैं गवाही देता हूँ कि हम उन पर निर्भर रह सकते हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और थोड़ी देर रहेगी कि फिर संसार मुझे देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित रहूंगा। मैं गवाही देता हूँ कि जिसे प्रिंस में लिखा है, जब हम यीशु मसीह के प्रश्न पर निर्भर रहेंगे, वो हमें मदद करेगा जीवन के बारे में। यीशु मसीह के प्रश्न द्वारा उचित बनाया जा सकता है। मैं गवाही देता हूँ कि पहले पूर्ण जीवन की उस उज्ज्वल सभा तुम्हारे और मेरे प्रियजन कब्र से आएंगे, जैसे खुद प्रभु द्वारा उन्होंने बतलाया है, क्योंकि वो जीवित है और वो हमें भी जीवित जिएंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
My beloved,
मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, हम अपने प्यार आप सबको देते हैं। हमें प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन की घोषणा इस सुबह को दिए हम खुश हैं, जो उम्र घटाए गए हैं लड़कों को 18 वर्ष और 19 लड़कियों के लिए। इस वजह से कई युवा मिशनरी सेवा के आशीष पा सकते हैं। मैं फिर से संदेश देता हूं, जो 2 साल पहले संदेश सुबह को प्रेसिडेंट मॉन्सन ने कहा था कि हर योग्य जवान लड़के को मिशनरी सेवा को जाना चाहिए। मिशनरी सेवा एक पुरोहित कार्य है, एक कार्य जिसे प्रभु ने हमें दिया है। फिर से उन्होंने कहा जवान बहनों को कि मिशन पर जाने एक सुभाग है लेकिन आज्ञा नहीं। और फिर उन्होंने निमंत्रण दी सभी बूढ़े उम्र के कपल के मिश्री सेवा में जाने के। मिशन की तैयारी करना जरूरी है। मिशन परमेश्वर और इंसान की सेवा का एक मुफ्त कार्य है। प्रचारकों यह सौभाग अपने व्यक्तिगत बचाए हुए पैसे से करते हैं। माता पिता, परिवारों, मित्र और जनरल मिशनरी फंड की धन वालों से मदद करता है। सारा प्रचारक जवान या बालिक दूसरे लोगों के जीवन की अच्छा बनाने के आशा में सेवा करते हैं। मिशन की सेवा को करना प्रचारकों की धार्मिक कार्य को प्रभावित करेगा। लड़का या लड़की या दंपति और उनके आने वाले पीढ़ियों के आने में एक सेवा की इच्छा के एक वातावरण लायक और तैयारियों के परिणाम है। बड़े दुनिया भर के सुनने वालों में तुम में से कई संबंध नहीं है। यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का और हमारे प्रचारकों के बारे में कम जानते हैं। तुम सुन रहे हो क्योंकि तुम मोमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हो और कार्य हमारे प्रचारों सिखाते जैसे तुम हमारे बारे में और सीखते हो। जो जानोगे कि हम एक ही सिद्धांत के रहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम उनसे अच्छे से सच्चे कार्य को करते हो। इस दुनिया में चेतावनी भरे हुए हैं। समय समय पर हमें मदद की जरूरत है। जाति अनंत सच्चाई और हमारे प्रचारों उसके भाग में मदद कर। हमारे जवान प्रचारों अपने पढ़ाई कार्य और जो कुछ भी जवान बालिक है कि तुरंत करते हैं टाल देते हैं। 18 और 24 महीनों तक वे कुछ दिनों के लिए कुछ और करते नहीं, क्योंकि उनको बहुत चाहत है प्रभु की सेवा को। और हमारे कुछ प्रभावकों सेवा करते हैं कि जब वे बुजुर्गों को जाते हैं, मैं जानता हूं कि उनके परिवार को आशीर्वाद मिलता है। हमारे अपने परिवार में 8 पूरे समय की प्रचारक की सेवा करते हैं। 3 पुत्रियां, उनके पतियां, एक नातिन और एक नाती। تم میں سے کچھ مومن نام سے بڑے میں سوچتے ہو. یہ ہمارے اپ نام ہے, یہ ہمارے صحیح نام نہیں ہے. حالانکہ سبھی لوگ ہمیں مومنس نام سے جانتے ہیں. یہ شبد مومن دھرمشاست کے پوتر سدھان سے ہے. گرجا گھر کے صحیح نام یسو مسیح کا گرجا گھر انتم دنوں کے سنتوں کے ہے. یہ پنستھاپت یسو مسیح کا صحیح گرجا گھر ہے. ان منسالک جیون کی دوران اس کے اپنے گرجا گھر کو سنگیتا کی, ان سے دیوتاؤں, سنتروں اور دوسرے نیتاؤں جس نے پروہتوں ادھیکار کو دیا تھا اپنے نام پر کاریہ کرنے سے, جب یسو اور اس کے دیوتاؤں مر گئے, انسان نے دھرم شاستوں اور وعدوں کو بدل دیا. صحیح گرجا گھر اور پروہتی کو کھو گیا تھا. بڑے سالوں کے بعد اور سورگ کے پتا کے نردیش پر یسو مسیح نے اپنے گرجا گھر کو واپس لایا. اب دوبارہ پنستھاپت اور کاریہ اس کے دیویہ مارگ درشن سے ہوا. ہم یسو مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس کے مرتیو کے مہان سفلتا کے بعد میں پریوجت ہوئے پربھو اپنے چیلوں کے پاس گیا, ستھانوں پر آیا, اس نے ساتھ کھایا, وہ ان کے ساتھ چلا, مگر ان کے انتیم فصل میں ان سے انہوں نے جہاں جانے کو کہا اور سبھی دیشوں کو سکھلاؤ, ان کے پتا اور پتر اور پوتر آتما کے نام سے بپتسمہ دیا. اپوزل سے سنگھاسن پر چلا. انہوں نے دوسروں کو بھی پربھو کے آگیوں پر پورا کرنے کے بتلایا. آج نئے اپوزل اور بھوشوکتاؤں کے مارگ درشن پر وہی کاریہ یسو مسیح کا گرجا گھر انتم دنوں کا سنتوں کو دیا گیا ہے. یہ پرچارکوں 150 دیشوں سے بھی زائدہ میں سیوا کر رہے ہیں. پربھو یسو مسیح کے چیلے کے طرح وہ اس دیویہ آگیا کو پورا کرنے کو کوشش کرتے ہیں. ہمارے دنوں میں پربھو نے خود ہی انعام دیا, سمپورن سمجھ پراپت ہوا ہے, سبھی لوگوں کے جیون کو سبھی ستھان پر آشیرواد دیا. پرچارکوں 10 کے بعد میں 20 سے پہلے سے پاس کچھ خاص ادھارن نہیں ہوتے, مگر انہوں نے پاس آشیرواد کا اپہار ہوتا ہے. پوتر آتما ان کے شکتی کی طرح پوش پرمیشور کے اپہار اور سچائی کی گواہی. وہ انہیں پربھو کی شکتیشالی دیو بناتے ہیں. وہ سوسماچار کے اچھے سوسماچار کو بتلاتے ہیں جو سبھی خوشی بھی نہیں ختم ہونے والی خوشی کو لاتا ہے. ان کے لیے وہ سندیش کو سناتا ہے اور کئی سمے پر وہ یہ کہ دیشوں اور ان سے سمبھاؤ میں پرچارکوں پریاس کرتے ہیں یسو مسیح کے دونوں شبد اور کاریہ میں انوسار کرتے ہیں. وہ یسو مسیح کے ان کے پرنسچاپت میں اپدیش کرتے ہیں. وہ یسو مسیح کے پورن گرجا گھر کے سنچل پنستھاپت پربھو کے پہلے انتم دنوں کے بھوشوکتا جوزف سمتھ سے سکھلاتے ہیں. تمہیں پہلے گنتی کیا, یہاں انجان بننے ہوں گے ہمارے پرچارکوں سے. میرے آشا ہے کہ ان سے ڈریے نہیں بلکہ ان سے سیکھیے. وہ سورگ سے بھیجے ہوئے سدارن تمہارے لیے ہو سکتا ہے. وہ جیری کے ساتھ ہوئے 60s کا ایک ویرودھی آدمی جو اریزونا میزا میرا تھا. جیری کا پتا بیپٹس کے منسٹر تھا, اس کے ماں میتھڈسٹ کا منسٹر کرنے والی. ایک دن جیری کے نزدیکی متر پرسیلا نے ان سے پیدا ہوا پتلایا جو ان سے اپنے بچے کے مار چھما پر ہوا اور پیدا کرتے ہوئے, اور تھوڑے سے بعد میں جب اس کا طلاق ہو گیا, اویوہت ماں کی طرح کشٹ ہوتا ہوا. پرسیلا کے پاس 4 بچے ہیں, 3 پتریاں اور 1 پتر. جان اس کے جیری کے ساتھ اپنے احساس کو بتایا, اس کے بتلایا کہ وہ آتمہتیا کرنا چاہتی تھی. سارے شکتی اور پیار کے ساتھ جو جیری दे सकता था ने उससे ये समझा कि उसके जीवन अनमोल है। उसने उससे अपने गिरजाघर में आमंत्रित किया, मगर प्रिसिला ने बताया कि उसका विश्वास परमेश्वर से उठ चुका है। जेरी नहीं जानता था कि उसके क्या करना चाहिए। बाद में जब वो अपने आंगन में पीढ़ियों को पानी छोड़ रहा था, पौधे को पानी छोड़ रहा था, उसने विश्वासी आदमी ने परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना किया। जब वह प्रार्थना कर रहा था, उसने अपने मन में एक आवाज़ सुनी जो कह रहा था, बसिकाल पर बच्चे को रखो। जेरी कुछ घबरा गया, आश्चर्य में हुआ कि कर मतलब क्या है। जब उसने आत्मिक प्रभाव को सोचा, वो रास्ते पर गया और दो जवान लड़कों को सफ़ेद कमीज में टाई में बैक्सेट चलते का इसमें से है। फिर ये देखते हुए उसने स्थिति पर बोलना, उसने चिल्लाया, हे तुम कृपया करके रुको, मुझे तुमसे बातें करनी है। घबराहट से साथ मगर आश्चर्य नज़र से जवान लड़का रुक गया, जैसे वो आश्चर्य की जेरी ने देखा कि वे नाम वाली बेज लगाए अपने आप को यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का प्रचारक पर पहचानता है। जेरी ने उनसे देखा और कहा, ये कुछ अजीब लग रहा था, मैंने क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? प्रचारक ने मुस्कुराते हुए किया, हाँ ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ। जेरी ने बताया कि वो प्रिसिला के चिंता में था। जल्द ही प्रचारक प्रिसिला उनके बच्चे और जेरी से मिला। उनको जीवन की मस्तव और परमेश्वर के आनंद योजना उनके लिए को बतलाया। जेरी प्रिसिला और उनके बच्चों ने प्रार्थना के द्वारा विश्वास किया मोमन धर्मशास्त्र के उनके सिंहासन से और गिरजाघर के संदेशों के प्यार भरे संगीत से। जेरी को यीशु मसीह मसीह में और भी विश्वास हुआ। प्रिसिला के खुद की खुशी के संघर्ष और चिंताओं आशा और खुशी में बदल गई। उन्होंने बपतिस्मा लिया और मसीह के पुनस्थापित गिरजाघर के सदस्य बन गए। हाँ, प्रचारकों कई तरीकों से मदद कर सकते हैं। उद्धारकर्ता में तुम में से कई अपने पूर्वज के जीवन में आ जाना चाहते हैं। तुम अपने माता पिता का नाम और तुम्हारे चार नाना नानियों का जानना होता, मगर क्या अनंत नाना नानी नानियों के बारे में, क्या तुम उनके नाम जानते हो? क्या तुम उनके बारे में जानना चाहते हो? प्रचारकों से पूछो, वे तुम्हारे मदद कर सकते हैं। उनके पास यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का आसान तरीका का परिवार का इतिहास को जानने का है। तुम में से कुछ सदस्य के मार्ग सक्रिय नहीं हो, तुम प्रभु को प्यार करते हो और सोचते हो कि वापस उसके पास जाएं, मगर तुम नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ करें। मैं सुझाव देता हूँ कि प्रचारकों से पूछो, वे तुम्हारे मदद कर सकते हैं। वे तुम्हारे मदद तुम्हारे चाहने वालों के सिंहासन के कर भी कर सकते हैं। हम और प्रचारक तुम्हारे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि खुशी मिले और तुम्हारे जीवन में वापस सुचमाचार की रोशनी। तुम में से कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे विश्वास की प्रचित करने या अधिक जिया और अच्छाई स्वास्थ्य पाए। प्रचारकों से पूछो, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। स्वाधीन सिंहास से ये दिखलाना है कि एक ढल की तरह यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संदेशों के स्वर्ग लोग होते हैं। उन्होंने मार्ग के गिरो सबसे कम हो, उनकी उम्र सबसे बड़ी है, किससे भी अच्छी डाल से सकते हैं। तुम में से कुछ महसूस करते हो कि जीवन की वस्त्र और आत्यक उचित है। इस पर भी हम हृदय की उदाहरण में महसूस करो कि अकेलपन की पैदा बिना ही मार्गदर्शन ये मत है। प्रचारक से पूछो, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वे तुम्हारे और ज्यादा जीवन की सच्चाई माताओं और सीख में मदद कर सकते हैं। کیوں تم یہ دھرتی پر ہو اور کہاں تم مرنے کے بعد جاؤ گے؟ تم یہ سیکھ سکتے ہو کہ کس طرح یسوع مسیح کا پنستاپت سوسماچار جیون کو آشیرواد دے سکتا ہے بھی زیادہ کو تم آج سوچ سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس پریواروں کے بارے میں کچھ چنتا ہے، پریوار سے پوچھو، پرکچوں سے پوچھو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ شادیوں اور پریواروں کو مضبوط کرنا، انتم دنوں کے سنتوں پریواروں ہمیشہ ساتھ رہ سکتا ہے، پرچاروں کے پوچھنے کے یہاں تمہارے پریوار کے لیے ناممکن کیسے ہے؟ سکسلسن بھرتا میں دھرپراتی کی اور سنسارک گیان کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں پوتر سدھانتوں کو سمجھنے کی ضرورت کرنے میں چاہیے۔ ایک الگ شکشان میں بھی جلد ہی پایا کہ انتم دنوں کے سنتوں، عیساؤں اور دھام شخصوں کے سب سے کہانی، اگر تم دھرم شاست کو اور اچھائی طرح سے چاہیے، مومن دھرم شاست کو اچھی طرح سے پوچھو کہ وہ تمہارے مدد کر سکتے ہیں۔ تم میں سے کئی پاس چاہتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ مدد کرے، کیونکہ وہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے چاہتے ہیں۔ انتم دنوں کے سنتوں بھی نہ رک سکتی ہے، اور اگر تم مرتیو کے بعد کے جیون سور کے پرمیشور کی یوجنا تمہارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اگر تم پربھو یسوع اس کے پراشچت اور اس کے گرجا گھر کے پنستاپتوں کے ستھان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، پرچاروک سے پوچھو، وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پرمیشور جیوت ہے، یسوع مسیح ہی مسیح ہے، اس کا گرجا گھر پنستاپت ہوا ہے، اس لیے میں پرارتھنا کرتا ہوں یسوع پربھو یسوع مسیح کے نام سے، ایمین۔
My life has a purpose in heaven. We are grateful.
हम टैबनेकल गायक मंडली और उनके संचालन और ऑर्गेनिस्ट के लिए आभारी करता है जो आज सुबह के सुंदर संगीत के लिए अंतिम भाषण करता है इस बैठक के लिए होगा प्रधान डीटा एफ उगडोव प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार प्रधान उगडोव के टिप्पणियों के बाद गायक मंडली सभा को समाप्त करेगी Now let us rejoice, Gagar. Samapti par pratna fir elda Juan A. Usteda Satar ke dwara de jayegi.
President Monson, we love you.
President Monson, hum aapse prem karte hain. Dhanyavaad dete hain. Jo aapne aaj batlaya missionaries ke bare mein aur phir temples ke vishay mein. मिशनरीज के द्वारा कई आशीर्वाद हमें मिलेंगे और सभी को जो आगे आएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों और दोस्तों हम सब मरणशील है मैं आशा करता हूं कि ये हमारे लिए अचंभव नहीं है हमें से कोई भी बहुत दिन तक नहीं धरती पर होगा हमारे पास धरती पर कुछ अनमोल वर्ष होते हैं जो आनंद दृष्टि में पलक झपकते जैसे भी नहीं होगी और फिर हम विदा लेते हैं हमारे आत्मा उस परिवार के पास ले जाते हैं जिसने हमें जीवन दिया हमारे शरीर कब्र में चले जाते हैं और हम धन दुनिया के सम्मानों को पीछे छोड़ देते हैं और हम उपस्थिति की दृष्टि मंजिल पर जाते हैं जब हम जवान होते हैं ऐसा लगता है कि हमारे जीवन हमेशा जिएंगे हम सोचते हैं हमारे जीवन के कई दिन बाकी है और भविष्य के एक लंबे रास्ते की तरह दिखलाती है जो कभी खत्म नहीं होगा हालांकि हम जितने बूढ़े होते हैं उतना हम पीछे देखकर आश्चर्य करते हैं कि रास्ते कितने छोटा है हम सोचते हैं कैसे वर्ष में इतनी जल्दी गुजर जाते हैं हम अपने बनाए चुनाने के बारे में सोचते हैं इस द्वारा हम कई मीठे पल याद करते हैं जो हमारे आत्मा को संतुष्टि देती है और दिलों को आनंद मगर हम अपने पछतावा को भी याद करते हैं जो हम वापस जाकर बदल जाते हैं एक नर्स जो बहुत बीमार लोगों को देखभाल करती है कहती है कि वो अक्सर अपने मरीजों से ये सरल सवाल पूछती है जब वो इस जवान को छोड़ने की तैयारी करते हैं क्या आपको कोई पछतावा नहीं वो पूछती है मरणशीलता के आखिरी दिन के इतने करीब होना अक्सर समझ को साफ करता है और पहचान और दृष्टि प्रदान करता है इसलिए जब इन लोगों से पछतावा के विषय में पूछा जाता है वे अपने दिल की बातें बताते हैं वो बतलाते हैं कौन सी चीज़ों को वो बदलना चाहेंगे अगर सिर्फ वो पिछले दिनों में जा सकते हैं जब मैंने उनके जवाब से गुब्बारे में सोचा मुझे आश्चर्य हुआ कि कई यीशु मसीह के सुसमाचार के बुनियादों से धर हमारे जीवन को सदा के लिए घुमा देते हैं अगर हम उसे आजमाएं सुसमाचार के सिद्धांत के बारे में कुछ गुप्त नहीं है हमने उसके बारे में सिद्ध धर्मशास्त्र में अध्याय दिया है हमें उन्हें रविवार कक्षा में चर्चा किया है और हमने कई बार और मार्च में सुना है ये दिव्य सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत और साफ है वो सुंदर घिरे और शक्तिशाली है और वो हमें विश्वास में पछतावा से बचाएंगे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा समय बिता सकें ज़्यादातर मरने वाले मरीजों ने कहता है वो प्रियजनों के साथ समय बिताने चाहते हैं वो ज़्यादातर पुरुष ये दुखता गाते हैं उन्हें अपने जीवन का ज़्यादातर अपने आप कम पर बिताने का पछतावा करते हैं कई लोग उन खास यादों से दूर थे जो परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मिलता है वो अपने चाहतों से के साथ गहरा संबंध बनाने में चूक जाते हैं क्या ये सच नहीं है कि हम अक्सर इतना व्यस्त हो जाते हैं और कितना दुख पहुंचता है ये कहने से कि हम व्यस्त होना एक सम्मान की समझते हैं, जैसे व्यस्त होना खुद में एक पदवी या है बढ़िया जिंदगी का कक्षे। मैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उनकी छोटी जिंदगी जो गैलिली के जेरूशलम और जेरूशलम के लोगों के बीच बेती थी बारे में सोचता हूँ। मैंने कल्पना करने की कोशिश की है उस सभाओं या जरूरी कामनाओं जो एक साथ करना जल्दी जल्दी ताकि वो खत्म कर सके, मुझे वो नहीं दिखता, बल्कि मुझे दयालु और परवाह करने वाले परमेश्वर का पुत्र दिखलाता है जो हर दिन एक लक्ष्य के साथ जीता है। जब वो किसी से बातें करता है वो आवश्यक और प्यार महसूस करता है, वो मिलने वाले लोगों के आनंद कीमत को जानते हैं, वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें सहायता करते हैं, वो उन्हें आगे बढ़ाते हैं और चंगा करते हैं, वो उन्हें अपने समय का कीमती उपहार देते हैं। हमारे समय समय में आसान है कि किसी के साथ समय बीतना कितना दूर होता है। कंप्यूटर के माउस को दबाकर हम हजारों दोस्तों से जुड़ते हैं जाते जो पास नहीं पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ हो सकती है और वो खासकर लाभदायक हो सकता जब हम अपने परिजनों के करीब नहीं होते। मेरी पत्नी और मैं करीबी परिवार सदस्य से दूर रहते हैं, हम जानते हैं ये कैसा होता है। हालांकि मैं विश्वास करता हूँ कि हम सही दिशा में नहीं रह जाते हैं निजी और सामाजिक रूप से, जबकि सबसे जाना माना तरीका है हम परिवार या दोस्तों से संपर्क करते हैं, वो मजाक के चित्र भेजते हैं, मामूली बातें कर लिखकर या उन्हें इंटरनेट के किसी वेबसाइट का भी पता भेजते हैं। मुझे लगता है इस तरह की गलती का कोई स्वीकृत माहौल है, मगर हम कितना समय उस पर बिता सकते हैं अगर हम खुद को और अपना समय और अवसर लोगों को नहीं देते। एक दिन हम पूछेंगे, पछताएंगे और हम इरादा करें प्रियजनों को अच्छी तरह देखने का, उनके साथ रहकर उनके साथ अद्भुत समय बिताकर और बहुमूल्य यादें बटोरना। मैं इच्छा करता हूँ कि मैंने अपनी संभावना को पा लेता। एक और पछतावा लोगों को ने करता है कि वो वैसा व्यक्ति नहीं हो बन पाते जो उन्हें महसूस किया जाता है उन्हें बनना चाहिए। जब वो अपने जीवन को मुड़कर देखते वे जान पाते हैं उन्होंने अपनी संभलता नहीं पाई कि कई चीज़ें नहीं हुई। मैं ये यहाँ सफलता पाने की बात नहीं करता अपनी पेशा में, वो सफलता चाहे कितनी बड़ी देखते धरती पर बहुत छोटा होता है और महान आनंद तक यात्रा में हो हम जान लेते वाले हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति परमेश्वर को जो कि परमेश्वर जो हमें बनते देखना चाहता है। हम इस दुनिया में आते हैं जैसे कवि ने कहा, फैलते हुए महिमा का के बादल एक फैले के जीवन से। हमारे स्वर्ग पिता ने हमारे सही संभावना को देखता है, वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, वो हमें हमारे जीवन के द्वारा प्रोत्साहित करता है अपनी रचना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक धार्मिक जीवन जीना और उनके उपस्थिति में लौटना। क्यों फिर हम इतना समय और शक्ति बिताते हैं और चीज़ों में जो थोड़े समय का है इतना अनावश्यक और इतना हल्का? क्या हम मूर्खता को देखने से इनकार करते हैं जो मामूली और अस्थाई है? क्या हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं होगी हमारे स्वर्ग पिता में ध्यान इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना मूर्छा लग सके और जहाँ चोर ना आ सके? हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? उद्धारकर्ता के उद्धार पर चलने से, उनके सीख को जीवन में आजमाने से और सच में परमेश्वर और मनुष्य से प्रेम करके। हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम चलापन को हिचकते हुए पालन करें। चिंता करना कि कितना देखकर और शिकायत करना जिम्मेदारी के बारे में जानबाज समझदार को जीने की आती है। हमें इस लड़के की तरह उस लड़के की तरह नहीं होना चाहिए जो अपना अनुगत बिना पाने में डाला और कहा करते वो तैरना नहीं गया, क्योंकि हम स्वर्ग के पिता पुत्र और पुत्रिया है। हम बहुत ज्यादा करने के योग्य है। इसके लिए अच्छे इरादे से काफी नहीं है, हमें करना चाहिए और ज्यादा आवश्यक है हमें वो बनना चाहिए जो स्वर्ग पिता की इच्छा है। सुसमाचार की अपनी गवाही को घोषणा करना अच्छा है, मगर पुनर्स्थापित सुसमाचार का जीवित उदाहरण बनना बेहतर है। वादों के प्रति ज्यादा विश्वासी होने की इच्छा करना अच्छा है। ठीक से ज्ञान से शब्द का पालन करना, अपना दसवां हिस्सा और भेंट को भरना और जरूरतमंद की सेवा करना बेहतर है। बतलाना कि हम परिवार प्रार्थना धर्मशास्त्र अध्ययन और लाभकारी परिवार गतिविधि में ज्यादा समय बिताते अच्छा है, मगर इन चीजों को करने से स्वर्ग के आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं आएंगे। चेलापन पवित्र और खुशहाली को पाने की कोशिश है। ये मार्ग खुद को बेहतर और खुशहाल बनाने का है। हम उद्धारकर्ता की बातें मानने की ठान लेने की पूरी मेहनत करें, वो इंसान बने जिसके लिए हमें बनाया जाता है। हम पवित्र आत्मा के प्रेरणा को सुने और पालन करें। जब हम ऐसा करेंगे स्वर्ग पिता की हमारे लिए उन बातों को प्राप्त करें जो हमें खुद नहीं जानते, हमारा आगे होगा और वो हमें दिखलाएगा। जितना हम खुद को पवित्र और खुशहाली में व्यस्त रखते हैं उतना कम संभावना है हम पछतावा के मार्ग पर जाएंगे। जितना हम उद्धारकर्ता के अनुग्रह पर निर्भर होंगे उतना ही हम महसूस करेंगे जीवन की यात्रा में कि हम स्वर्ग के पिता के चुने हुए मार्ग पर है। मैं इच्छा करता हूँ कि मैंने खुद को खुश रहने दिया है। एक और पछतावा मरने वालों का होता है, आश्चर्य है। उन्होंने इच्छा किया है कि उन्होंने खुद को खुश रहना दिया है। अक्सर हम इस दुख में पड़ते जाते हैं कि हमारे पहुंच से थोड़ा आगे कुछ है जो हमें खुश करेगा। एक बेहतर परिवार परिस्थिति, एक बेहतर आर्थिक स्थिति या एक मुसीबत का अंत। हम जितने बूढ़े होते हैं हम उतना पीछे मुड़कर देखते हैं और जान पाते हैं कि भारी बाहरी परिस्थितियाँ आवश्यक नहीं या उससे हमारी खुशहाली तय नहीं होती। हम आवश्यक है, हम अपना खुशहाली तय करते हैं। तुम और मैं आखिर में खुशहाली की जिम्मेदारी रहेंगे। मेरी पत्नी हेरेत और मैं बाइसिकल चलाना पसंद करते हैं, बाहर जाकर आनंद लेते हैं। कुछ रास्ते जिन पर हम चलना पसंद करते हैं मगर नहीं देखते कि हम कितने दूर जाएंगे या कितनी तेज जाएंगे। हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूँ हमें मुकाबला करना चाहिए। हमारा समय या गति बेहतर हो सकता है अगर हम थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ा और मेहनत करें। कभी कभी मैं इस इरादे को अपनी पत्नी से कहने की गलती कर देता हूँ। इसका बर्ताव ऐसी टिप्पणियों के लिए बहुत दयालु है, साफ और सीधा होता है। वो मुस्कुराती है और कहती है, डेटर ये कोई मुकाबला नहीं, ये एक सफर है, इस पल का आनंद लो। वो कितनी सही कहती है। जीवन में कभी कभी हम इतना ध्यान समाप्ति पर देते हैं कि हम सफर का आनंद नहीं ले पाते। मैं अपनी पत्नी के साथ साइकिल चलने नहीं जाता क्योंकि मुझे समाप्त करने की जल्दी है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ समय बिता सकूं। क्या मूर्खता होगी नहीं मीठे आनंद में अनुभव को देना लेना, क्योंकि हम लगातार उस पर इंतज़ार करते रहे जब वो समाप्त होगा। क्या हम सुंदर संगीत को सुनते हैं समय इंतज़ार करते कि वो कब खत्म हो जाए? नहीं, हम हर सुर और शब्द को सुनते हैं और समझते हैं। क्या हम प्रार्थना बोलते हैं सिर्फ आमेन या अंत पर ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम स्वर्ग के पिता के करीब होए, उनके आनंद को पाने और प्रेम को महसूस करने के लिए। हमें खुश रहने का इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि हम आगे जाकर उन्हें मिलेंगे। खुशहाली अभी ही मिल सकती है। जीवन का आभार सिर्फ पुराने बातों की सोचते से नहीं मिलती। कवि ने लिखा है, आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो। भाई और बहनों, चाहे जो भी हमारी परिस्थिति हो, जो भी हमारे चेतावनी हो, चुनौतियाँ हो, मुसीबत हो, हर दिन में कुछ होता है गले लगाने और याद करने के लिए। हर दिन में कुछ होता है जो अभर और आनंद लाता है। शायद हमें अपने आँख से कम और अपने दिल से ज़्यादा देखना चाहिए। मुझे ये कहावत पसंद है, एक व्यक्ति दिल से साफ देखता है, ज़रूरी बातें आँखों को नहीं देखते। हमें आज्ञा दिए गए हैं हर एक बात में कृतज्ञता प्रकट करें, जो तो क्या बेहतर अपने अपने आँखों और दिल से देखने की छोटी सी आभारी। प्रभु ने वादा किया है, वो जो सब कुछ पता है कृतज्ञता को शानदार किया जाएगा और इस धरती की चीज़ों उन्हें ज़्यादा मिलेगी ज़्यादा से। भाई और बहनों, हमारे स्वर्ग पिता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है। उनकी उदारता का मुक्त का योजना पुनस्थापित के समाचार और मनचल यात्रा की सिद्धार्थें, क्या आनंद मनाने के हमारे पास कारण नहीं है? इसलिए हमें खुश रहना का समाधान करना चाहिए, समाधान से संबंधित। एक दिन हम जरूर मुड़कर दूसरे और जाएंगे। एक दिन हम अपने जीवन को देखेंगे और सोचेंगे कि क्या हम बेहतर हो सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं, या अपने समय बुद्धिमान से इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन के कुछ गहरे पछतावों से बचने के लिए हम बुद्धिमान होंगे आज कुछ समाधान बनाकर। इसलिए आओ हम ज़्यादा समय प्रियजनों के साथ बिताएं, मन लगाकर परमेश्वर के बातों को पालन करें, खुशियां ढूंढे की थान ले परिणाम की परवाह से। ये मेरी गवाही है कि उद्धारकर्ता को हम पालन कर सकते हैं और हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर हम अपने पाप या गलतियों को समझेंगे और पश्चाताप करें, हम समय में वापस जाकर आने अपने गलती को सुधार नहीं सकते, लेकिन हम पश्चाताप कर सकते हैं। उद्धारकर्ता हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ देंगे और वो पाप को बोझ को दूर कर देंगे। उनका प्रायश्चित हमें मौका देता है और इस इरादे के साथ कि हम इच्छा करेंगे और बेहतर बनेंगे। हाँ, ये जीवन तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। हमारे दिन जल्द से धुंधले हो रहे हैं। मृत्यु कभी कभी दीवारी दिखती है, परंतु हमारा आत्मा जीवित रहता है और हम एक दिन अपने पूर्ण जीवित शरीर से छुड़कर अनंत महिमा प्राप्त करेंगे। और मैं ये दिल से गवाही देता हूँ कि दयालु मसीह के कारण हम सब एक बार फिर हमेशा के लिए जीवित होंगे। हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के कारण हम एक दिन सही मानने से बात के मतलब को समझेंगे और खुश होंगे। मृत्यु की पीड़ा मसीह में लीन हो जाती है। परमेश्वर की बेटे और बेटियां के हैसियत को हमारे देवता लक्ष्य को मार में आएंगे। भाई और बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, हमें इस मार पर आज ही चलना शुरू करना है। हम किसी एक दिन को भी गवा नहीं सकते। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम मृत्यु आने के इंतजार में जीवन को सही तरीके से जीना ना सीखे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।
Beloved Heavenly Father,
हमारे प्यारे शक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम अपने सर झुकाकर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन में, और हम आभारी देते हैं कि आप हमें जो माफी देते हैं और आपके पुत्र आपके बलिदान के कारण और उसके जिंदगी के जीवन और जिन्होंने हमें सिखलाया उसके सिद्धांत के लिए, उसके जीवन होने के लिए। और हम आभारी है हमारे भविष्यवक्ताओं के लिए और जो हमारे आशीर्वाद मिलते हैं। और हम आभारी है कि जो हमें दो नए मंत्रे मिलेंगे जो सदस्यों को आशीर्वाद देंगे तूसान में और पेरू में। हम धन्यवाद देते हैं और देखेंगे कि और ज़्यादा लड़के लड़कियां मिशन पे जाएंगे। और हम आपके विश्वास को आगे बढ़ाएं और युवकों को आशीर्वाद मिले कि वे अपने आप को तैयार करें मिशन पे जाने के लिए। और हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने सभी सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि स्वर से उन्हें शक्ति मिले कि वे आगे बढ़ सके, कि हम याद करें जो सिद्धांत आपके पुत्र ने हमें सुषमाचार सिखाया है कि हम अच्छे गिरजाघर के सदस्य बन सके। और यह प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से करते हैं, जी यीशु मसीह के नाम से जो हमारे आपके पुत्र है। आमीन।
This has been the first session of the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.